हम बात कर रहे थे कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं भगवान को। हाँ, तो जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये आपको एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करती है कि आप भगवान के दर्शन कर पाओ। कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ये भगवान ने अपनी एक बहुत ही अद्भुत लीला के द्वारा भगवान ने दिखाया था। तो पुरी में आप सबको पता है जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना, अगस्त में करीब होती है, जुलाई में होती है ना। सो करीब 550 साल पहले की बात है ये। उस समय जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा में है ना, तो उस समय उड़ीसा का राजा था महाराज प्रताप रुद्रा। तो जो राजा था वो भगवान के दर्शन करना चाहता था, और पुरी में उस समय भगवान दो रूप में रह रहे थे। एक तो पुरी में भगवान रह रहे थे जगन्नाथ जी के रूप में, और दूसरा भगवान रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके भगवान कृष्ण अवतरित हुए, तो उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सो पुरी में भगवान दो रूप में रह रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी भी जो अमीर लोग हैं जैसे महाराज प्रताप रुद्र, उनसे नहीं मिलते थे और बोलते थे मुझे अमीर लोगों से नहीं मिलना, अमीर लोगों का दिमाग खराब होता है, तो मैं मिलूंगा मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत कोशिश की चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाए। राजा चैतन्य महाप्रभु को मिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सब भक्तों से प्रार्थना की कि मुझे किसी तरह से आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करा दो। तो सब लोगों ने बोला आप धैर्य रखो, आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी आपको। जब रथ यात्रा का अवसर आया, रथ यात्रा का दिन आया, तो महाराज प्रताप रुद्र ने अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए उन्होंने, और वस्त्र त्याग के उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में झाड़ू पकड़ ली उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी का रथ चलेगा और रथ के आगे भक्त चलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, और भक्त जो हैं वो क्योंकि नंगे पैर चल रहे थे, तो उन्होंने बोला उनके आगे की जो सड़क है उसको साफ कर देता हूँ ताकि भक्तों को परेशानी नहीं हो। तो महाराज प्रताप रुद्र ने झाड़ू लिया और बहुत ही साधारण वस्त्रों में वो रथ के और भक्तों के आगे गए, और उन्होंने सड़क को बुहारना शुरू कर दिया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो बहुत खुश हुए। और फिर क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी में तीन रथ चलते हैं, है ना, एक में भगवान कृष्ण होते हैं, सबसे आगे कौन होता है, सबसे आगे बलदेव जी होते हैं, फिर सुभद्रा महारानी, और सबसे पीछे भगवान कृष्णा होते हैं, है ना, अपनी बहन की सुरक्षा करते हैं बीच में रख के उनको, है ना। वो तीन रथों के साथ में 7 कीर्तन करने वाली पार्टियां थी, 7 ग्रुप थे कीर्तन करने वाले, और हर एक ग्रुप में 2 मृदंग बजाने वाले थे, 3-4 करताल बजाने वाले थे, 1 गाने वाला था और बाकी लोग उनके पीछे गाते थे। तो 7 टोलियां बनी हुई थी कीर्तन करने के लिए। तो महाराज प्रताप रुद्र ने क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना विस्तार 7 रूपों में कर दिया, और वो 7 टोलियों में चैतन्य महाप्रभु उनको चुप करा। महाराज प्रताप रुद्र ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। बाकी लोग ये सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु एक ही टोली में है, कोई सोच रहा था इस टोली में है, कोई सोच रहा था वो टोली में है, लेकिन एक सिर्फ महाराज प्रताप रुद्र थे जो कि देख पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु सातों टोलियों में इकट्ठे नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो महाराज प्रताप रुद्र को ये विशेष कृपा प्राप्त हुई, विशेष चक्षु उनको मिले कि वो भगवान के इतनी दिव्य लीला का दर्शन कर पाए। जैसे नारद मुनि है, है ना, नारद मुनि एक बार द्वारका गए तो उन्होंने कहा मैं भगवान की लीला देखना चाहता हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं। तो जब गए तो एक महल में गए तो देखा एक महल में भगवान रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। दूसरे महल में गए तो भगवान खेल रहे थे। तीसरे महल में गए भगवान खाना खा रहे थे। चौथे महल में गए भगवान अपनी रानी के साथ बात कर रहे थे। पांचवें महल में गए तो मंत्री के साथ बात कर रहे थे। छठे महल में गए तो भगवान बगीचे में घूम रहे थे, है ना। तो 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की। तो नारद मुनि सब महलों में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान सब जगह मौजूद है और सब जगह अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह से रह रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे बीच में खड़े हैं भगवान और चारों तरफ शीशे लगा दिए, 16,000 शीशे लगा दिए तो चलो जी देखो 16,000 भगवान के विस्तार हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान 16,000 महलों में एक ही काम कर रहे हैं कि एक जगह हाथ उठाया तो 16,000 कृष्णा ने हाथ उठा दिया, ऐसा नहीं है। हर महल में भगवान अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान हर किसी को अपना ये ऐश्वर्य नहीं दिखाते, है ना। हम जाते हैं मंदिर में तो हम सोचते हैं कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति है। हाँ, हम भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन फिर भी हम भगवान को देख नहीं पाते। और क्यों नहीं देख पाते? भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर एक किसी को अपना दर्शन नहीं देता। नाहम प्रकाश, ना अहम, मैं नहीं प्रकाश दर्शन देता सर्वस्य, हर एक को। क्यों क्यों नहीं देते? कैसे छुपा लेते हो आप अपने आप को? योग माया समाविता, मैं एक योग माया का पर्दा लगा देता हूँ। हाँ, तो लेकिन हम तो देख पा रहे हैं भगवान को। हम प्रभु आपका फोन साइलेंट है। अच्छा, सो आप सब भी अपना फोन प्लीज साइलेंट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। सो योग माया समाप्तता, कि भगवान एक योग माया का पर्दा लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान को देख रहे हैं लेकिन हम भगवान को वास्तव में देख कर भी नहीं देख पाते। इसको बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देखना, है ना। आप बोलो ऐसा कैसे कह रहे हो कि भगवान को नहीं देख पाए? हाँ, क्या चीज, आप ऐसा कैसे कह पा रहे हो कि भगवान को नहीं देख पा रहे? हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे एक ग्रंथ में एक वृंदावन के एक दृश्य का वर्णन है जहाँ पर कि एक गोपी दूसरी गोपी को बोल रही है कि देखो तुम जमुना जी के घाट पे मत जाना, अगर तुम में अपने परिवार के प्रति अपने शरीर के प्रति जरा से भी आसक्ति है तो यमुना जी के घाट पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पर तीन शरीर में तीन त्रिभंग मुद्रा में तीन जगह से टेढ़े भगवान वहां पर कृष्ण खड़े हैं और बंसरी बजा रहे हैं। वो अगर तुमने उनको देख लिया तो फिर तुम अपने घर में सुख नहीं पा पाओगे, तुम्हारा मन भगवान कृष्ण चुरा लेंगे, है ना। तो अगर हम अपने घर में सुख का अनुभव कर रहे हैं, अपने शरीर में हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, अभी हम हमारा मन भगवान ने अभी चुराया नहीं है, है ना। सो इसको बोलते हैं पश्यन अभी न पश्यति, कि हमने देखा लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दिए, कुछ अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, मन में कुछ भाव नहीं आया, है ना। तो वो कैसे होगा, कैसे हम भगवान को देख पाएंगे? हम देख पाएंगे जैसे महाराज प्रताप रुद्र ने अपने जो उदाहरण है उसके द्वारा दिखाया कि अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि वे भक्त के पैरों को तकलीफ हो रही है, चलो जमीन साफ कर देता हूँ, है ना, या हम सोचेंगे कि भक्त अभी उनको भूख लगी होगी, चलो उनके लिए कुछ पकवान बना के लेके जाते हैं, या प्यास लगी होगी पानी लेके जाते हैं, भक्तों के बारे में कुछ सोचना, है ना, भक्तों की सेवा करना। अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्तों की सेवा के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, जैसे नारद मुनि ने किया। नारद मुनि पिछले जन्म में पता कौन थे? नारद मुनि पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, है ना। सो नारद मुनि जो है उनकी जो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, हाँ, और जो उनकी माता है किसी के घर में बर्तन साफ करने का काम करती थी, तो जिसके घर में वो काम करती थी उनकी माता, वहां पर कुछ साधु आके ठहरे, हाँ, तो जब साधु आके ठहरे तो उनकी माता उस साधुओं की सेवा कर रही थी, तो नारद मुनि छोटे से बालक थे, तो उन्होंने बोला कि क्या मैं भी आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो वो वैष्णवों ने बोला हाँ ठीक है, हमारी सेवा करो। तो जो नारद मुनि है वो उनके पैर दबाते थे, उनके लिए पानी लेके आते थे, उनका बिस्तर लगाते थे, सफाई करते थे। आप क्या घर की बातें कर रहे हो? आप यहाँ पे घर की बातें करने आए हो? हाँ, आप कुर्सियाँ कुछ अरेंज कर लो ना यहाँ पर। सो ऐसा करो ना, आप ये कुर्सी दे दो, मैं नीचे, अरे मैं नीचे ला जाता हूँ ना, किसको दिक्कत हो रही है? हाँ, सो यहाँ पे आप कुछ कुर्सियां ला के रख सकते हो ना, चार पांच। हाँ, क्या चीज बेटा, कुछ कुर्सियां लेके आओ। हाँ, जिस तरह तो नारद मुनि सेवा कर रहे थे वो वैष्णवों की, वो सेवा करने से वो बहुत खुश हो गए, और खुश होकर उन्होंने वैष्णवों ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया, उनको बोला कि आपकी जो मति है, आपकी बुद्धि भगवान में लगेगी, आपकी रुचि भगवान का नाम लेने में बढ़ेगी। सो क्या हुआ कि वो जब वैष्णव चले गए तो कुछ समय के बाद जो नारद मुनि है उनकी माता को सांप ने डस लिया। पिता पहले से नहीं थे, माता का भी देहांत हो गया, तो छोटे से बालक के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन नारद मुनि घबराए नहीं, है ना। उन्होंने बोला चलो ये मौका मिला है, भगवान का नाम मैं अच्छे से ले पाऊँ, तो उन्होंने फौरन घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए, और भगवान का नाम ले रहे थे। एक बार बैठ के तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और भगवान ने बोला कि आप और अच्छे से आप मेरे नाम का जप करो, और ये शरीर जब तुम छोड़ोगे तो फिर तुम्हें मैं ऐसा दिव्य शरीर दूंगा कि तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जा पाओगे, वैकुंठा में भी आ जाओगे, है ना। नारद मुनि को कभी वैकुंठा में जाने के लिए वीजा थोड़ा ना लगाना पड़ता है, सोचते हैं पहुंच जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि एक साल लगेगा पहुंचने में या 24 घंटे लगेंगे, आंखें बंद की सोचा, आंखें खोली पहुंच गए, है ना। सो भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया, और भगवान ने उनको ये आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि नारद मुनि जो है वो उन्होंने सेवा की थी भक्तों की, वैष्णवों की उन्होंने सेवा की थी। सो हम सबको वैसे ही वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए हमेशा, लेकिन ये जो जगन्नाथ जो रथ यात्रा आपके यहाँ पे हो रही है कल, ये विशेष आपको अवसर है। आपके यहाँ पे पूरी दिल्ली से कल भक्त आएंगे, है ना, यहाँ पे 4-5 बसें आएंगी और पूरी दिल्ली से लोग आएंगे धोती कुर्ते में वैष्णव ड्रेस के अंदर, और सारे मिलके बहुत जोर जोर से भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। बहुत अच्छा कीर्तन होगा। आप सोचो कि अभी हमने 10 मिनट का कीर्तन किया, कल 4-5 घंटे लगातार कीर्तन होगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप। एक जन थक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा थक जाएगा, तीसरा शुरू हो जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, है ना, एकदम लगातार 4-5 घंटे भगवान का कीर्तन चलेगा। उसके बाद एक बहुत ही परम वैष्णव है, उनको हमने प्रार्थना की है कि वो अभी वो परसों ही अमेरिका से आए हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, इंडियन हिंदुस्तानी है लेकिन अमेरिका गए थे प्रचार के लिए, तो अभी कल परसों ही वापस आए हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्यों नहीं आते यहाँ पर, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वो एक बहुत ही विद्वान वैष्णव है, वो आएंगे यहाँ पर, आप सबको भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो बहुत कल आप, और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अकेले ही सारे जो है सुख ले लूँ इसका, सारे परिवार को लेके आओ, पूरे अपने मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, सबको इनवाइट करो, है ना। हमने पूरी दिल्ली में, मैंने अकेले ने कम से कम 500 फोन किए हैं लोगों को, सबको बुलाया है ना। इसी तरह से आप भी सब लोगों को बुलाओ, है ना, और सबको बोलो अपना बटुआ घर रख के आना, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप लोग आओ और भगवान के जो रथ है उसकी रस्सी खींचो, है ना। ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, रथे चा गमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। अगर किसी ने एक बार भगवान जगन्नाथ को रथ पे सवार देख लिया, उनका रस्सा खींच लिया, दोबारा जन्म नहीं होगा उसका, ये शरीर छोड़ा सीधा भगवत धाम, है ना। भविष्य पुराण में भी लिखा है कि जगन्नाथ जी के रथ के कोई आगे पीछे दाएं बाएं जो चलता है, उसको भगवान कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जिस भी ग्रह, भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं, नित्य लीला का मतलब है भगवान किसी ना किसी लोक में भगवान अपनी लीला, कोई ना कोई लीला कर रहे हैं, है ना। जैसे भगवान अभी भी किसी लोक में मक्खन चुरा रहे हैं, अभी भी किसी लोक में भगवान अघासुर का वध कर रहे हैं, अभी भी कहीं पर भगवान पूतना का वध कर रहे हैं, तो क्योंकि किसी ना किसी ब्रह्मांड में, किसी ना किसी लोक में भगवान की लीलाएं चल रही हैं, सेम लीला, और भगवान की असंख्य लीलाएं। आप सोचो कि हम सोच भी नहीं सकते कैसे भगवान की असंख्य लीलाएं असंख्य ब्रह्मांडों में अलग 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 जगह चल रही होंगी। तो क्योंकि भगवान की लीलाएं कभी भी रुकती नहीं है, इसलिए भगवान की लीलाओं को बोला जाता है नित्य, नित्य लीला। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सूरज के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे सूरज कहीं ना कहीं अभी उग रहा है ना, कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, कहीं ना कहीं दोपहर है, नहीं है कि नहीं है। अभी अमेरिका में आप फोन करो तो बोलेंगे अभी तो सूरज उग रहा है, आप अभी दुबई फोन करो तो बोलेंगे अभी दुबई हमसे 3.5 घंटे पीछे है, तो अभी क्या है आपके यहाँ 8 बज गए हैं, हाँ वहाँ पे 5 बजे होंगे, है ना। और जैसे आप चाइना फोन करो, चाइना आपसे 4-5 घंटे आगे है, वहाँ पे आधी रात हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं सूरज उग रहा है, कहीं ना कहीं सूरज डूब रहा है, कहीं ना कहीं दोपहर है, है ना। तो सूरज जो है वो भगवान की आंख के बराबर है, एक आंख, एक आंख सूरज, एक आंख चंद्रमा। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, जो सूर्य है वो भगवान की आंख के समान है। जब भगवान की आंख में इतनी शक्ति है कि कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, कहीं ना कहीं डूब रहा है, कहीं ना कहीं दोपहर है, जब सूरज में इतनी ताकत है, जब सूरज में शक्ति है, तो भगवान में तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति है। इसीलिए भगवान की लीलाओं को नित्य कहा जाता है। भगवान कहीं ना कहीं भगवान को यशोदा माई रस्सी से बांध रहे हैं, इस समय भी भगवान कहीं ना कहीं कालिया दमन कर रहे हैं, कालिया नाग के सिर पर भगवान इस समय नाच रहे हैं। तो अगर हम ऐसे सोचें तो हम हमेशा कृष्ण भावना भावित बने रह सकते हैं। हम हमेशा, आपको भगवान की जो भी लीला अच्छी लगे, आप उस लीला का बार बार स्मरण कर सकते हो, है ना। जैसे एक बार हम वृंदावन में थे और हम एक वैष्णव से मिले, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज हमें दामोदर लीला के बारे में बताइए। तो उन्होंने दामोदर लीला बतानी शुरू की और दामोदर लीला बताते बताते जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। लीला बताना नहीं रुके, वो बराबर से बताते रहे, लेकिन साथ में जोर जोर से वो रो भी रहे थे, क्योंकि वो भगवान की लीला को स्मरण कर रहे थे, है ना। सो जो अगर आप बार बार अगर आप अभ्यास करो, बार बार भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करो अगर आप, और हमेशा भगवान के दिव्य नामों का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, अगर आप भगवान के नामों का जप करोगे तो धीरे धीरे जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की शिक्षाएं हैं, आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगी और साथ साथ आप भगवान का दर्शन करने के अधिकारी बन जाओगे अगर आप भक्तों की सेवा करोगे, ठीक है। तो कल आप अकेले मत आइए, आप अपने परिवार को, मित्रों को, संबंधियों को, सबको, पड़ोसियों को लेकर आइए, ताकि हर कोई जो है इस अवसर का लाभ उठा सके। अगर कोई बोले कि हमें इसमें कुछ हमें विश्वास नहीं है, उसको बोलो नहीं विश्वास है, आओ तुम्हें डांस दिखाते हैं फ्री में, तो तुम्हें फ्री में प्रसाद खिलाते हैं, तो ऐसा करके कोई भी बहाना लगा के उसको लेते आओ। और किसी तरह से भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, कीर्तन सुना, तो उनको परम लाभ प्राप्त होगा और उनको लाभ प्राप्त होगा, और क्योंकि आप उनको लेके आए थे इसलिए आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्णा।